लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा के दूसरे और तीसरे दिन की संक्षिप्त रिपोर्ट। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को हंगरी और स्लोवाकिया में अपनी चार दिवसीय प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन यूरोपीय देशों में बढ़ती आप्रवास विरोधी भावनाओं, राष्ट्रवाद और स्वार्थगत मानसिकता की पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिकाधिक केंद्रित रहने के खतरों के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि यूरोप के राष्ट्र स्वार्थी और रक्षात्मक मानसिकता के प्रलोभन में न पड़े। पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों द्वारा सहे गए साम्यवादी शासनकाल के दमन चक्र को याद करते हुए संत पापा ने कहा, इन देशों में कुछ दशक पहले तक एक एकल विचार प्रणाली वाले साम्यवाद ने स्वतंत्रता का गला घोंट दिया था। आज एक और एक तरफा निकाय स्वतंत्रता के अर्थ को ही खाली कर रहा है तथा प्रगति को केवल लाभ, व्यक्तिगत जरूरतों और अधिकारों तक सीमित कर रहा है। स्लोवाकिया की राष्ट्रपति सुजाना कापुतोवा तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनाधिकारियों और कूटनीतिज्ञों को राष्ट्रपति भवन के उद्यान में संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा था, यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भ्रातृभाव की नितांत आवश्यकता है। सन 1993 तक स्लोवाकिया साम्यवादी शासनकाल के दौरान चेकोस्लोवाकिया का भाग रहा था। स्लोवाकिया तथा लगभग सभी पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवादी काल के पतन के बाद आर्थिक विकास का आनंद उठाया है। हालांकि दुर्भाग्यवश यूरोपीय संघ में अपने एकीकरण के बाद से इन देशों में, विशेष रूप से मध्य पूर्व से आने वाले आप्रवासियों के विरुद्ध राष्ट्रीयवाद को भी प्रश्रय मिला है। संत पापा ने आप्रवास संकट से निपटने के लिए प्रायः यूरोपीय समाधान खोजे जाने की पैरवी की है तथा उन सरकारों की कड़ी आलोचना की है जो इस समस्या को एक तरफा और अलगाववादी कार्रवाइयों से सुलझाने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने कहा, अन्यों को देखने का हमारा ख्रिस्तीय तौर तरीका उन्हें बोझ अथवा समस्या के रूप में देखने से इनकार करता है, अपितु सहायता और सुरक्षा करने के लायक भाई बहनों की तरह देखने के लिए प्रेरित करता है। सोमवार को स्लोवाकिया के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों को अपना संदेश देने के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने ब्रातिस्लावा शहर में एक यहूदी सभागृह के स्थल पर निर्मित नाजी नरसंहार के शिकार बने लगभग 100,000 यहूदियों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, यह एक शर्मनाक तथ्य है कि ईश्वर में विश्वास करने का दावा करने वाले लोगों ने अमानवीयता के अकथनीय कृत्यों को किया अथवा इन्हें होने दिया। ध्वस्त कर दिए गए यहूदी मंदिर के स्थल पर निर्मित स्मारक पर शोक समारोह का आयोजन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी शासनकाल के दौरान यहूदी मंदिर को जाहिरा तौर पर एक पुल के निर्माण हेतु ध्वस्त कर दिया गया था। इस विषय में पत्रकारों से ब्रातिस्लावा के सहयोगी धर्माध्यक्ष जोसेफ हाल्को ने कहा कि यह विरोधाभासी है कि साम्यवादियों ने आसपास की अन्य इमारतों को ज्यों का त्यों रहने दिया जबकि यहूदी मंदिर को ध्वस्त कर डाला। गौरतलब है कि अभी विगत सप्ताह ही स्लोवाकिया में यहूदियों पर अत्याचारों की 80वीं बरसी मनाई गई। इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर ने राष्ट्र की ओर से यहूदी समुदाय से क्षमा याचना कर विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत किया।
संत पापा फ्रांसिस ने ब्रातिस्लावा के सेंट्रल रायबने नेमेस्टी स्क्वायर में ब्रातिस्लावा के यहूदी समुदाय के साथ मुलाकात की। यह वही स्थान है जहां 1969 में सरकार द्वारा शहर के नियोलोग सिनागोग को ध्वस्त कर दिया गया था। संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाक यहूदियों को मेल मिलाप और दोस्ती के मार्ग पर बने रहने की इच्छा के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि वे एक तीर्थयात्री के रूप में उस पवित्र भूमि का दर्शन करने उनके बीच उपस्थित हैं, जहां एक बार एक आराधनालय राज्याभिषेक महागिरजाघर के सामने खड़ा था। दो समुदायों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अभिव्यक्ति एक असामान्य प्रतीक और हमारे पिता ईश्वर के नाम पर एकता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कई लोगों की तरह मैं भी मानव बंधुत्व के पवित्र स्थान में अपने जूते उतारने की इच्छा महसूस करता हूँ। संत पापा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 100,000 से अधिक स्लोवाक यहूदी मारे गए थे। घृणा के उन्माद में ईश्वर के नाम का अपमान किया गया था। हम शर्म के साथ स्वीकार करते हैं कि कितनी बार सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवर्णनीय नाम का इस्तेमाल अमानवीयता के अकथनीय कृत्यों के लिए किया गया है। संत पापा ने कहा, आपका इतिहास हमारा इतिहास है, आपके कष्ट हमारे कष्ट हैं। मैं उन लोगों में शामिल होता हूं जो अपने प्रियजनों की स्मृति का सम्मान करते हैं और याद रखने के महत्व को बनाए रखते हैं। अभी वह उपयुक्त समय है हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए मानवता में चमकते हुए ईश्वर की छवि को अब और धूमिल नहीं होने दें। आइए हम इस प्रयास में एक दूसरे की मदद करें। संत पापा ने तलमूड के हवाले से कहा, जो कोई एक व्यक्ति को नष्ट कर देता है वह पूरी दुनिया को नष्ट करता है, जबकि जो एक व्यक्ति को बचाता है वह पूरी दुनिया को बचाता है। हर व्यक्ति मायने रखता है और आप अपने महत्वपूर्ण आदान प्रदान के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। संत पापा ने कहा, आपने दोनों तरफ जो दरवाजे खोले हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस दुनिया को खुले दरवाजे की जरूरत है। उन्हें उम्मीद है कि स्लोवाकिया में पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की मुलाकात की भूमि, इसराइल के बच्चों का परिवार इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखे और पृथ्वी के सब कुलों के लिए आशीष का चिन्ह बने। पिता ईश्वर उन भाइयों और बहनों के परिवारों को आशीर्वाद देते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके आशीर्वाद का आह्वान करते हैं, ताकि हमारी दुनिया को दूषित करने वाली सभी कलहों के बीच आप हमेशा एक साथ शांति का साक्ष्य दे सकें। शालोम।
ब्रातिस्लावा में सोमवार अपराह्न स्लोवाकिया के यहूदी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद संत पापा फ्रांसिस ने शहर स्थित स्वर्गीय मदर तेरेसा के मिशनरी धर्म संघ द्वारा संचालित बेतलहम केंद्र की भेंट की। यह केंद्र निर्धन और समाज से बहिष्कृत बेघर लोगों का शरण स्थल है। आनंद से प्रफुल्लित होकर बेतलहम केंद्र में सेवारत धर्म बहनों और केंद्र में निवास करने वालों ने तालियों और जय गीतों से संत पापा फ्रांसिस का भावपूर्ण स्वागत किया। बच्चों ने वैटिकन और स्लोवाकिया के ध्वज फहराकर तथा फूलों की पंखुड़ियां बिखेर कर गीतों और नृत्यों से संत पापा का हार्दिक अभिनंदन किया। धर्म बहनों ने पुष्पमाला पहनाकर अपने कर्म स्थल पर संत पापा का स्वागत किया। केंद्र के ओर छोर सैकड़ों श्रद्धालु संत पापा फ्रांसिस की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे थे। केंद्र के प्रवेश द्वार पर संत पापा फ्रांसिस का विशाल चित्र लटकाया गया था, जिसके नीचे लिखा था, हम आपके लिए प्रार्थना करना कभी नहीं भूलते हैं। ब्रातिस्लावा के बेतलहम केंद्र में संत पापा फ्रांसिस की भेंट निर्धारित कार्यक्रम से अलग एक निजी भेंट थी। तथापि संत पापा ने यहां सेवारत धर्म बहनों को जरूरतमंदों के प्रति उनके अनुपम कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, हर कठिनाई की घड़ी में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। प्रभु कभी भी हमारा परित्याग नहीं करते, वे सदैव हमारे समीप रहते हैं। मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने ब्रातिस्लावा से स्लोवाकिया के कोसिके शहर के लिए प्रस्थान किया। लगभग 50 मिनटों की हवाई यात्रा के उपरांत वे कोसिके हवाई अड्डे पधारे तथा यहां से उन्होंने प्रेसव नगर का रुख किया। प्रेसव नगर स्लोवाकिया का तीसरा विशाल नगर है, जिसकी आबादी 90,000 है। बीजेंटाइन रीति के कैथलिकों के गढ़ प्रेसोव में ही मंगलवार प्रातः स्थानीय समय अनुसार 10:30 बजे संत पापा फ्रांसिस ने बीजेंटाइन रीति के कैथलिकों के संरक्षक संत संत जॉन क्रिजोस्तम के आदर में आयोजित दिव्य धर्म विधि की अध्यक्षता की।
संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया की प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन पेशाव में बेजेंटाइन दिव्य उपासना की धर्म विधि में सहभागी होते हुए क्रूस विजयी पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा, हम क्रूसित यीशु को घोषित करते हैं जो ईश्वर की शक्ति और ईश्वर के विवेक हैं। संत पौलुस क्रूस के बारे में कहते हैं, मानवीय ज्ञान के अनुसार यह एकदम भिन्न एक ठोकर और मूर्खता है। क्रूस मृत्यु की एक निशानी है, यद्यपि यह जीवन का स्रोत बना। यह एक अति दर्दनाक दृश्य था, फिर भी इसके द्वारा ईश्वर के प्रेम की सुंदरता प्रकट हुई। यही कारण है कि आज के पर्व में ईश प्रजा क्रूस की आराधना करती है। संत योहन का सुसमाचार हमें क्रूस के रहस्य को समझने में निर्देशित करता है। सुसमाचार लेखक स्वयं वहाँ क्रूस के नीचे उपस्थित थे। यीशु को निहारते हुए जो मरणशील क्रूस पर टंगे थे वे लिखते हैं, उसने जो देखा है वह उसका साक्ष्य देता है। दुनिया की नजरों में क्रूस असफलता की निशानी है। हम भी अपने को इस जोखिम में घिरा पाते हैं जहां हम इस विचार से पारे नहीं जा पाते। क्रूस को छिछले निगाहों से देखते हैं। हम भी क्रूस के संदेश को स्वीकारने में असफल हो सकते हैं कि यीशु अपने ऊपर दुनिया की सारी बुराइयों को लेते हमें बचाते हैं। संत योहन वहीं दूसरी ओर क्रूस में ईश्वर की उपस्थिति और कार्य को देखते हैं। क्रूसित यीशु में वे ईश्वर की महिमा को पहचानते हैं। उन्होंने देखा कि अपने स्वरूप के बावजूद यीशु असफल नहीं होते बल्कि ईश्वर बने रहते हैं जो अपने को हर नर और नारी के लिए देते हैं। वे अपने को बचा सकते थे। वे अपने को दुख तकलीफों से और मानव इतिहास की क्रूरता से दूर रख सकते थे। इसके बदले वे इतिहास में प्रवेश करने को चुनते हैं, अपने को मानवीय इतिहास में डुबोते हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक कठिनतम मार्ग क्रूस का चुनाव किया। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी हताश निराश व्यक्ति अपने घोर दुख अंधेरे परित्यक्त परिस्थिति अपनी ठोकर और गलतियों में उसे खोजने और पाने हेतु निरुत्साह का अनुभव न करे। उस परिस्थिति में जहां हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करते वे वहां आते हैं। संत पापा ने कहा, हम कैसे क्रूस में महिमा को देखना सीखते हैं? कुछ संतगण इसे एक किताब के बारे में प्रस्तुत करते हैं जिसे हमें खोलकर पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम अपने को उनके घावों से स्पर्श होने नहीं देते, हमारा हृदय उनके प्रेम से ओतप्रोत नहीं होता और हम उनके घावों को देखकर आंसू नहीं बहाते, तो क्रूस अपाठ्य किताब की तरह होता है जिसके लेखक और शीर्षक को हम जानते हैं लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। संत पापा ने कहा, यदि हम यीशु पर अपनी निगाहें गड़ाएं तो हम उनके चेहरे को अपने में प्रतिबिंबित होता पाते हैं। उनके गुण हमारे गुण बनते हैं, उनका प्रेम हमारे जीवन का अंग बनता और हमें परिवर्तित करता है। वह व्यक्ति जो क्रूस का साक्ष्य अपने हृदय में धारण करता वह किसी को शत्रु की भांति नहीं देखता बल्कि वह सबों को अपने भाई बहनों के रूप में देखता है जिनके लिए यीशु ने अपने प्राण दिए।
Il testimone della croce non ricorda i torti del passato e non si lamenta del presente.
क्रूस का साक्ष्य अतीत की गलतियों में नहीं रहता और न ही वर्तमान समय में विलाप करता है। क्रूस के साक्ष्यों का केवल एक ही मनोभव होता है, संत पापा ने कहा, जो स्वामी के कार्य करने के तरीके को अपनाते हैं जो नम्र प्रेम है। वे अपने में विजयी होने की चाह नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि ख्रिस्त का प्रेम उनके प्रतिदिन के जीवन में फलप्रद होगा, सारी चीजों को अंदर से नवीन बनाएगा, जैसे कि एक बीज जमीन पर गिरता मरता और जीवन देता है। संत पापा ने कहा, यीशु आज भी हम सबों से कहते हैं, क्या तुम मेरे साक्षी बनना चाहते हो?
स्लोवाकिया में अपनी 4 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया के प्रेसव नगर में स्थानीय रोमानी अथवा जिप्सी समुदाय के लोगों की भेंट की तथा स्लोवाकिया के युवाओं को अपना संदेश दिया। रोमानी जिप्सी या खाना बदोश समुदाय के लोगों से मुलाकात के बारे में वैटिकन रेडियो से बातचीत में स्लोवाकिया में सेवारत डॉन बॉस्को धर्म समाज के सदस्य फादर रातिस्लाव हमराशेक ने कहा। प्रेसाव में संत पापा फ्रांसिस द्वारा रोमानी समुदाय की भेंट केवल कलीसिया के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण स्लोवाकिया के लिए एक अति महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि संत पापा द्वारा रोमानी जाति के लोगों की भेंट करने हेतु लिया गया विकल्प हमें खानाबदोश लोगों के प्रति अपनी सोच में गहन परिवर्तन हेतु आमंत्रित करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोमानी समुदाय के साथ संत पापा फ्रांसिस का सामीप्य खुद उन्हें यह समझने में मदद प्रदान करेगा कि सबके साथ मिलकर मैत्री और शांति में रहना कितना महत्वपूर्ण है। फादर रातिस्लाव ने कहा कि संत पापा की उपस्थिति रोमानी समुदाय के पक्ष में सेवारत कलीसियाई कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करेगी, जिसके लिए वे संत पापा के प्रति हृदय की अतल गहराई से आभार प्रकट करते हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया में कोशिजे के लुनिक नावे प्रांगण में रोमानी समुदाय से मुलाकात की। उन्हें संबोधित कर उन्होंने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आपके स्वागत एवं स्नेही शब्दों के लिए धन्यवाद। संत पापा पॉल छठवें के शब्दों का स्मरण दिलाते हुए संत पापा ने कहा, कलीसिया में आप हाशिए पर नहीं हैं, आप कलीसिया के हृदय में हैं। कलीसिया में कोई भी बाहर रहना या बाहर कर दिया जाना नहीं चाहता है। यह न सिर्फ सत्यवाद है बल्कि कलीसिया की सच्चाई है, जिसमें हम ईश्वर द्वारा बुलाए गए एक ही टीम के सदस्य के रूप में जीते हैं। वे हमें पुत्र पुत्रियों के रूप में देखते हैं, एक पिता के रूप में स्नेह से अपने बच्चों पर नजर डालते हैं। यदि मैं उन्हें इस तरह देखने देता हूँ तो मैं भी दूसरों को इसी तरह देखने सीखूंगा। मैं महसूस करूंगा कि मैं ईश्वर के दूसरे बेटी बेटियों से घिरा हुआ हूं और मैं उन्हें अपना भाई बहन मानूंगा। कलीसिया भाई बहनों के साथ एक पिता का परिवार है। वास्तव में वे मानवता चाहते हैं कि एक विश्वव्यापी परिवार बन जाए। कलीसिया निश्चय ही एक घर है, यह आपका घर है। संत पापा ने कहा कि पूर्वाग्रह को दूर करना सहज नहीं है, यहाँ तक कि क्रिश्चियनों के लिए भी। दूसरों को महत्व देना आसान नहीं है, खासकर जब हम उन्हें समस्या या शत्रु के रूप में देखते हैं। हम उन्हें जानने का प्रयास किए बिना और उनकी कहानी सुने बिना उनका न्याय करते हैं। क्रिस्त हमें न्याय नहीं करने के लिए कहते हैं, जबकि हम कई बार केवल गपशप करते अपने आप को न्याय संगत ठहराते और दूसरों का कठोर न्याय करते हैं। कितनी बार हमारा न्याय पूर्वाग्रह पूर्ण होता है। इस तरह हम ईश्वर के बेटे बेटियों की सुंदरता को अपने शब्दों से कुरूप बनाते हैं, जो हमारे ही भाई बहन हैं। हमारा ज्ञान और दूसरों के प्रति हमारी सराहना इस अंगीकार पर आधारित हो कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर के बेटे बेटियां होने का अनुलंघनीय सौंदर्य है, सृष्टिकर्ता की छवि का प्रतिबिंब है। तब संत पापा ने रोम समुदाय से कहा कि आप बहुधा पूर्वग्रह, कठोर निर्णय, भेदभावपूर्ण रूढ़िवादिता, मान हानिकारक शब्द और दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। प्रतिष्ठा को बनाए रखने का अर्थ है पूर्वग्रह से वार्ता की ओर बढ़ना, आत्मकेंद्रण से एकीकरण की ओर जाना। पर हम इससे किस तरह कर सकते हैं, जहां हर एक व्यक्ति की चिंता होती है, प्रेरित देखभाल होती है, जहां धीरज एवं ठोस प्रयास होते हैं। ये सभी फल लाते हैं। ये फल शीघ्र नहीं किंतु उपयुक्त समय में दिखाई पड़ते हैं। न्याय करना और पूर्वग्रह दूरी बढ़ाते हैं। बार एवं तीखे शब्द मददगार नहीं होते। दूसरों को हाशिए पर रखने से कुछ हासिल नहीं होता। अपने आप को दूसरों से अलग करना कई बार गुस्सा का कारण होता है, जबकि शांतिपूर्ण सहस्तित्व का मार्ग है समन्वय। संत पापा ने एकीकरण के क्रिया में लगे सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उन सभी धर्म सामाजियों एवं लोक धर्मियों के प्रति अपना आभार प्रकट किया जो रोमानी समुदाय के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं।